राम श्रम श्रदे स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा यह प्रवचन दिनांक 25 अक्टूबर 1993 को वृंदावन में दोपहर 3 बजे हुआ। राम
वराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण 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 नारायण। भगवत संबंधी बातें हैं, बहुत विलक्षण है ऐसा मानता हूं मैं, बड़ी अलौकिक है। कितनी विलक्षणता है ये मैं पूरी जानता नहीं हूं, सीधी सरल बात। हमने तो कुछ अध्ययन किया है, कुछ संतों का संग किया है, उससे कुछ मालूम हुआ है, उसके अनुसार उनमें से जो याद आ जाती है वो बातें कह देता हूँ। भक्ति ज्ञान आदि के विषय में शास्त्रकारों के तरह तरह से मत है, जिसमें एक मत ऐसा कहता है कि पहले कर्म योग है, उसके बाद भक्ति योग है, उसके बाद ज्ञान योग है। ऐसे एक आचार्य शरण बताते हैं। दूसरे श्री आचार्य कहते हैं पहले कर्म योग है, फिर ज्ञान योग है, फिर भक्ति योग है, ऐसा। और तीसरे ऐसा कहते हैं कि कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग तीनों ही स्वतंत्र है। मन तत्व की प्राप्ति में ये तीन बातें बताई, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, और कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग तीनों ही स्वतंत्र। ये साधन है वो साधन ऐसा नहीं है। परमात्मा तत्व की प्राप्ति में कर्म योग भी स्वतंत्र है, भक्ति योग भी स्वतंत्र है, और ज्ञान योग भी स्वतंत्र है। तीसरी बात आती है कि कर्म योग तो पहले है, उसे एक शांति मिलती है। कर्म योग से सांसारिक जो इच्छाएं है, वासना है, तृष्णा है, चाहना है, कामना है, ये मिट जाती है, तो जड़ता से संबंध विच्छेद उन्हें शांति मिलती है। और ज्ञान योग से अपने स्वरूप का बोध हो जाता है कि मैं क्या हूं, मेरा स्वरूप क्या है, कैसा है, इस स्वरूप का बोध हो जाता है। और भगवान की भक्ति से भगवान की कृपा पूर्वक उसकी प्राप्ति हो जाती है, तो वो कृत कृत भी हो जाता है, ज्ञात ज्ञात भी हो जाता है, प्राप्त प्राप्त भी हो जाता है। कर्म योग से कृतकृत्यता और ज्ञान योग से ज्ञात ज्ञातव्यता और भक्ति योग से प्राप्त प्राप्तव्यता ये हो जाती है। क्योंकि मनुष्य में तीन शक्तियां है, एक करने की शक्ति है, एक जानने की शक्ति है, और एक वो पूर्णता प्राप्त हो जाएगी मानने की शक्ति है। मानने की करने की शक्ति में कर्मयोग है, जानने की शक्ति में ज्ञान योग है, और मानने की शक्ति में भक्ति योग है। तो भक्ति योग से प्राप्त प्रातव्य हो जाता है, ऐसी बात है। ये बात ठीक मालूम देती है। आप हम विचार करें गहरा तो तीन हमारे में शक्तियां हैं, जानने की शक्ति भी है और मानने की शक्ति भी है और करने की शक्ति भी है। तो इन तीनों का उपयोग कैसे करें जिससे इस तत्व को हम समझ सकें। और जो इसमें एक बात बताई है कि ज्ञान भक्ति के बाद ज्ञान, ज्ञान के बाद भक्ति, ऐसी बताई थी, इससे मालूम होता है कि दोनों ही अनंत है। ये बात ठीक है, ये बहुत ही ठीक बात है। परंतु ज्ञान के बाद भक्ति, भक्ति के बाद ज्ञान, ऐसा है तो एक साधक ज्ञान होता है, एक साध्य ज्ञान होता है। एक साधन भक्ति होती है, एक साध्य भक्ति होती है। और कर्मयोग है वो योग है, ये योग, योग एक बहुत विलक्षण है। गीता में योग शास्त्र कहा है, इति श्रीमद् भगवद् गीता सु उपनिषद सु ब्रह्म विद्याया, अरे योग शास्त्र है, ये योग शास्त्र है। तो योग बड़ा विलक्षण होता है जिसमें कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग तीनों होते हैं। तो करने की शक्ति का उपयोग दुनिया मात्र की सेवा करने में है, ये करना नाम सेवा करने के लिए। करने की शक्ति जो अपने सुख के लिए, अपने संग्रह करने के लिए लगा देते हैं, ये बहुत गलती होती है। इससे तत्व की प्राप्ति नहीं होती, बार बार जन्म मरण होता है। प्रायः मनुष्य इसी में लगे हुए हैं। धन प्राप्त करना, धन से सुख भोगना, तो संग्रह और सुख भोग इन दो में लगी हुई है दुनिया सभी। बहुत कम है जो इससे ऊंचे उठते हैं, ऊंचे उठने की इच्छा ही रखते हैं, ऐसे बहुत कम है। ऊंचे उठने वालों में भी ऐसी बात रहती है कि धन की बड़ी जरूरत है, बड़ी आवश्यकता है, और सुख भोग भी चीज है इस संसार में सुख भोगने के लिए। तो उसके लिए ये बात है कि वास्तव में संसार में सुख भोगने के लिए मनुष्य शरीर नहीं है। सुख भोगने के लिए इंद्रादि के लोग है, स्वर्गादि के लोग इंद्रों के हुए है सुख भोगने के लिए। और सुख भोगना और दुख भोगना ये साथ में रहता है। ऊंचे स्वर्गादि के लोगों में चले जाओ तो वहाँ सुख भोग की अधिकता है, पर दुख का भोग वहाँ छूटता नहीं, वहाँ दुख भी भोगना पड़ता है। और दुख भोगने के लिए नरकों की प्राप्ति होती है और 84 लाख जोनि की प्राप्ति होती है। तो वहाँ दुख भोगने के लिए मिलता है तो वहाँ सुख भी मिलता है। महान नरक है जहाँ बड़ी घोर यातना है, ऐसी घोर यातना में भी सुख मिलता है। दुख तो खास है ही उसमें, पर उसमें भी सुख मिलता है। अब विचार करो वहाँ सुख क्या मिलता है। जैसे घोर यातना में वो नार की शरीर होता है, वो शरीर और तरह का होता है, हमारे जैसा शरीर नहीं होता। हमारे शरीर में तो बहुत अधिक दुख दिया जाएगा तो प्राण निकल जाएंगे, पर यात्रा में शरीर नरकों का होता है, उसमें कितने ही दुख मिले वो मरता नहीं। जब तक उनके जितने दुख भोगने के लिए वह मानव वो नार की शरीर मिला है, उतने दुख न भोगे तब तक मरता नहीं। उसके शरीर के टुकड़े 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 कर दिए जाए तो वे मिलकर के पीछे शरीर बन जाता है। वैसे ही जैसे तेल का कड़ा है, बहुत उबल रहा है तेल, जैसे धुआं निकल रहा है, ऐसे तेल में वो शरीर डाल दिया जाए तो उसमें पकता रहता है, होश नहीं रहता है, इतनी वो पीड़ा हो जाता है। उसको हवा में रख देते तो हवा लगने से उसमें भी एक सुख होता है, वो दुख मिटा है उतना उतना सुख, वो इंद्रिय से होने वाला सुख वहां भी मिलता है। इस वास्ते भागवत में आया है, सुखम इंद्रियकम राजन स्वर्गे नरक एववा। ये इंद्रियों से होने वाला सुख स्वर्ग में मिलता है और नरक में भी मिलता है। स्वर्ग तो खास सुख भोग के लिए है, पुण्य कर्म के सुख भोगने के लिए है, तो सुख भोगने के लिए वहाँ भी दुख मिलता है और इंद्रिय जन्य सुख तो नरक में भी मिलता है जो सबसे अधिक दुख भोगने का स्थान है। पहले है दो नंबर का दुख होता है 84 लाख जोनी में वो भोगा जाता है, उनसे अधिक नरकों में सुख भोगा जाता है। तो वो भगवान ने कहा है आश्री योनि मापन्ना मूढ़ा जन्मन जन्मनी, वे आश्री योनि है नरकों की 84 लाख योनि, वो आश्री योनि में पड़े हुए जन्म जन्म में दुख पाते हैं। मेरे को न प्राप्त हो गए ततो भी अधमान गति ज्ञानी, उससे भी महान अधम गति को प्राप्त होते हैं। तो उस समय अधम गति है वो नरक है, नरकों में जाते हैं वो। तो दुख भोगने के ये दो स्थान है, ऐसे सुख भोगने वाले ऊर्ध्व गति को जाते हैं। पांच गति बताई है, एक मध्य गति है, एक ऊर्ध्व गति है, एक अधा गति है। तो अधोगति में दो भेद है, ऊर्ध्व गति में भी दो भेद है, एक मध्य गति है। सब पांच गतियों का वर्णन गीता में आता है, ऊर्ध्व गति सत्वस्था, मध्य दृष्टि राजसा, अधोगति तामसा। तो ऊर्ध्व गति के दो भेद है, उनके शुक्ल और कृष्ण मार्ग दो बताए। ऊपर लोकों में जाते हैं वो स्वर्गादिक में जाते हैं, स्वर्ग से आगे ऊंचे लोकों में ब्रह्म लोक का सुख सबसे बढ़कर बताते हैं। ब्रह्म लोक में जाते हैं वह सुख भोग करके फिर पीछे यहाँ जन्म मरण में आ जाते हैं। वह सुख भोग कर जितना सुख भोगना हो तो भोग कर फिर आ जाते हैं। ये ब्रह्म लोक का सुख है, स्वर्ग का सुख है, इसमें सब कर्म कटते नहीं है। कर्मों की एक बात विचित्र है, वो याद आ गए बीच में। वे सुख भोगते हैं तो कितना भोगते हैं, जितने सुख भोग के लिए स्वर्ग मिला, जितने सुख भोग के लिए ब्रह्मलोक मिला, कई लोग हैं ऊपर, उन लोगों में सुख भोगने के लिए मिला वे भोग वहाँ कटते हैं। पाप पुण्य, आपने पुण्य उतने उतने पुण्य भोगने के बाद फिर क्षीणे पुण्य मर्त लोग मिशंती, वे पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो मृत्यु लोक में आते हैं। तो आप ब्रह्म भुवना लोक का पुनरावर्ती न ब्रह्म लोक तक के लोग सब से पुनरावर्ती होते हैं। तो पुनरावर्ती होते हैं वे लोग ऊपर के सुख भोगने के बाद, तो कर्मों का फल भोगते हैं वहाँ, परंतु कर्म सब कटते नहीं है। ऐसे गीता में एक आई है बात, त्रय विद्या माम सोम पा भूत पापा यज्ञ निष्ठा स्वर्गति प्रार्थयन्ते ते पुण्य मासाद्य सुरेन्द्र लोक मश्नंत दिव्या दिव्य देव भोगान। 20-21 दो श्लोक है 9वें अध्याय के, उसमें तीनों वेदों का जो कर्मकांड विषय है उसका अनुष्ठान करने वाले स्वर्गाधिक भोग भूमियों में जाते हैं और वहाँ वो पुण्य भोग करके पीछे आते हैं। तो उनमें दोनों बातें आई है, त्रिविद्या माम सोम पा पूत पापा, पाप नष्ट हो गए उनके, पवित्र हो गए, और स्वर्ग लोक में भोग करके क्षीणे पुण्य, पुण्य क्षीण हो गए हैं फिर आते हैं। तो पाप क्षय हो गया, पुण्य क्षय होने तो मुक्ति हो जानी चाहिए, दो ही तो है जन्म भोग करने के लिए। तो वो पुण्य क्षय उतना ही होता है जितना उनमें अवधि इतना दिन ये स्वर्ग में रहेगा, और पाप ही उतने ही नष्ट होते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति में बाधक होते हैं, वे पाप नष्ट होते हैं, वे भूत पापा है। मन पुण्य और पाप नष्ट नहीं होते, पुण्य और पाप बहुत संचित पड़ा हुआ है, वो कर्म का विषय बड़ा, वो भी गहन है बड़ा। थोड़ी सी बात कह देता हूँ, हम जो काम करते हैं उन कर्मों को कहते हैं क्रियमाण। तो शुभ और अशुभ दोनों काम करते हैं उन कर्मों का संग्रह होता है, उनका फल भी भोगना पड़ता है। तो शुभ कर्मों का फल स्वर्गादि में भोगते हैं, अशुभ कर्मों का फल नरकादि में 84 लाख में भोगते हैं। तो वो कर्म अभी करते हैं उसको क्रियमाण कर्म कहते हैं, अभी किए जाते हैं भले और बंदे, उनका एक संग्रह बनता है, उन संग्रह विभाग को संचित कर्म कहते हैं और अब किए जाए क्रियमाण कहते हैं। और संचित में से जितने सुख दुख भोगने के लिए कर्म निकाले जाते हैं उनको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। ये प्रारब्ध कर्म है, आरंभ हो गए, मानो कर्म अपना फल देने के लिए आरंभ हो चुके, वे प्रारब्ध कर्म है। तो प्रारब्ध कर्म है उनमें जो सुख दुख है वो भोगने के लिए स्वर्ग आदि को ब्रह्म लोक तक के भोग सुख भोगने के लिए जाते हैं, वो प्रारब्ध कर्म उसमें नष्ट होने पर बिस आ जाते हैं, संचित कर्म बाकी रह जाते हैं। ऐसे ही पाप कर्म किए हुए वो नरक 84 लाख योनि में जाते हैं, पर पाप कर्म जितना प्रारब्ध हो गया है वो प्रारब्ध बन करके वहाँ भोगा देते हैं, संचित कर्म और बाकी रह जाता है। वो संचित कर्म है वो एक तरह का खजाना है, खजाना और कमाते हैं, ये नए कर्म करते हैं ये कमाते हैं, मन पुण्य और पाप दोनों कमाते हैं और खजाना है वो। उस खजाने में से जितना खर्च करने के लिए करते हैं वो प्रारब्ध कर्म कहलाता है। जैसे अराज की आपने कोठा भरा हुआ है, उसमें से जितना भोजन करने के लिए निकाल लेते हैं उनको पीस करके रोटी बनाकर खा लेते हैं, तो वो संचित है, वो तो कोठे में भरा हुआ अनाज की तरह है, और रोटी बना के लिए जितना खा लिया उसको प्रारब्ध है, यार उनको वो खा ले खत्म हो जाएगा, तो वो प्रारब्ध कर्म हुआ। रुपये जितने घटे किए खजाने में भरे हुए हैं, 10-20-50 रुपये खर्च करने के लिए जेब खर्च में ले लिया, वो खर्च हो जाते हैं, वे खर्च होते हैं, वे प्रारब्ध कर्म है, और जो खजाने में पड़ा वो संचित कर्म की तरह है। उन कर्मों के भोगते हुए अगर ये जो नए कर्म कर रहे हैं वो सब क्रियमाण कर्म है, वे क्रियमाण कर्म सब संचित में भर्ती होते हैं। अनेक जन्मों का संचय किया कर्म है, उस कर्म राशि में क्रियमाण कर्म भर्ती होते हैं, वहां पड़ते हैं। तो वे क्रियमाण कर्म हम जो करते हैं अभी संचित में जाते हैं, संचित से प्रारब्ध बनता है, प्रारब्ध से शरीर मिलता है, शरीर में सुख दुख और आयु और जन्म का भोग होता है। जैसे विभाग तीन तरह का भोग है, वो एक जन्म होता है, एक आयु होती है, एक सुख दुख परिस्थिति होती है, तीन तरह का कर्म फल भोग होता है। तो जन्म भी ऊंचा नीचा होता है और आयु में सुख दुख भी आते हैं और मृत्यु भी आती है, तो ये तीन कर्मों का फल है जात्यायुर भोग, कृषि विभाग को जात्यायुर भोग, तो इस तरह से कर्मों का फल भोगते हैं। और जो नया कर्म करते हैं वो एक संचित में भर्ती होते हैं। अब संचित में शुभ अशुभ सब तरह के कर्म पड़े हुए हैं। अब इन थोड़ी सी फल की बात बता देता हूँ, ये विस्तृत आपको देखना हो तो साधक संजीवनी के 18वें अध्याय में 12वां श्लोक है, अनिष्टम इष्टम मिश्र त्रिविधं कर्मणा फलम, अनिष्ट इष्ट और मिश्र तीन तरह के कर्मों का फल होता है, उसका वर्णन उसमें है, उसमें अलबत्ता खासी काफी ऐसा वर्णन किया है। फिर करगाना कर्मो गति कर्मो गति, बड़ी गहरी गति है, उसमें पूरा नहीं आया है, परंतु मन उसके सुनने समझने के लिए काफी सामग्री आ गई कर्मों की। वो कर्मों का विभाग है, तो वो कर्म किए जाते हैं शुभ अशुभ, वो संचित होते हैं, शुभ से प्राप्त होते हैं, प्राप्त से शरीर मिलते हैं। तो ये जितने शरीर मिलते हैं लोग हैं, ये प्राप्त कर्मों का फल होता है, उन संचित में से जितने कर्म है। तो पूत पापा का अर्थ स्वर्ग के प्रतिबंधक पाप दूर हो गए, और वहाँ स्वर्ग में जो प्राप्त का फल है वो सुख भोग लिया, वे क्षीण पुण्य हो गया, वो पुण्य क्षीण हो गया, परंतु संचित का कर्म वो फल नहीं होता, वो पड़े ही रहते हैं। वे संचित कर्म तीन तरह से नष्ट होते हैं। एक तो परमात्मा तत्व का बोध हो जाता है, तत्व ज्ञान जिसको कहते हैं, जीवन मुक्त हो जाता है, उसके संचित कर्म सब नष्ट हो जाते हैं, वे अज्ञान के आश्रित रहते हैं। अज्ञान जब खत्म होता है तो आश्रय मिटने से वे कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। एक भगवान की भक्ति करते हुए भगवान की प्राप्ति होते हैं तो भगवान कर्मों को नष्ट कर देते हैं। एक कर्मयोग से कर्म करते करते निष्काम भाव से कर्म किए जाते हैं, वो फलजनक नहीं होते, मानो सुख दुखदायी फल नहीं होता उनका। निष्काम भाव से कर्म किए जाए, उनसे अंतःकरण शुद्ध होकर के तत्व ज्ञान होता है अथवा भगवत भक्ति की प्राप्ति हो जाती है, वे मिलकर फिर कर्म फल नष्ट हो जाता है और कर्मयोग का अनुष्ठान करते करते भी नष्ट हो जाते हैं। ये वो 23वां श्लोक है, गत संघर्ष मुक्तस्य ज्ञानावस्थित यज्ञ आचरत कर्म समग्र प्रविलीयते, तो समग्र प्रविलीयते 4वां अध्याय 23वां श्लोक। तो सबके सब कर्म कर्मयोग से भी नष्ट होते हैं, भक्ति योग से भी नष्ट होते हैं, ज्ञान योग से नष्ट होते हैं, वो संचित सब कर्म खत्म हो जाते हैं, तब जीव मुक्त हो जाता है। मुक्त हो जाए मतलब छूट जाता है। किस बात से छूटता है? खास कामना से। ये जो भीतर कामना रहती है ये कामना का फल है, स्वर्ग जाना, ब्रह्मलोक जाना, नरकों में जाना, चौरस लाख जोनी में जाना, मनुष्य में आना, ये कर्म है, कर्मों का फल है। तो कर्म शुभ अशुभ है ये सब नष्ट हो जाते हैं तो मुक्ति हो जाती है। तो सब नष्ट कर्म योग से भी होते हैं, भक्ति योग से भी होते हैं, ज्ञान योग से भी होते हैं। और कर्म से किया जाए तो पहले कर्म योग कर लो। कर्म योग से क्या होता है कि जड़ता का संबंध विच्छेद होता है। जड़ता का संबंध विच्छेद होने के बाद उसके भक्ति के संस्कार है भगवान के, तो भक्ति जागृत हो जाती है, और ज्ञान के संस्कार है तो उसमें ज्ञान जागृत हो जाता है। ज्ञान है, भक्ति है, प्रेम ये पैदा नहीं होते, सुख दुख पैदा होते हैं, ये कर्मों का फल है। भक्ति और ज्ञान ये फल नहीं है, किए हुए कर्मों का फल नहीं है, ये तो स्वतः नित्य है आप में। वो अब अज्ञान के कारण, कर्मों के कारण से, आवरण के कारण से पता नहीं लगता, तो ये जागृति हो जाती है भक्ति की। प्रेम भी है और ज्ञान भी सब में है, परंतु वो जागृत नहीं होता है, दबा हुआ है। तो इसके अनुष्ठान करने से, कर्म योग से, योग से समता, योग ना है समता का, तो समता पूर्व कर्म किए जाए, राग और द्वेष हर्ष शोक न हो, ठीक बेठीक में न उलझे, और कर्म किया जाए दुनिया की सेवा मात्र सबको सुख पहुंचाने के लिए, तो ऐसा करने से उनके कर्म नष्ट हो जाते हैं कर्म योग से भी। और भगवान का भजन करते हुए भगवान के आशीर्वाद हो जाए, अपनी कोई इच्छा न रखे, समता वो भक्ति योग होता है। भक्ति में इच्छा रखते हैं तो भक्ति योग नहीं होता, भक्ति होती है परंतु भक्ति योग नहीं होता। योग के बिना समता नहीं है, समता योग एक ही है, उसके बिना संपूर्ण कर्मों का नाश नहीं होता। ऐसे ज्ञान योग है, वो बोध है अपने स्वरूप का, उसके बोध हो जाने से संचित कर्म नष्ट होते हैं। ऐसे पुस्तकों से ज्ञान किया जाता है, जड़ है, चेतन है, स्थावर है, जंगम है, ये क्या चीज है, कैसे इन कर्मों का विवेचन करते हुए ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो ज्ञान के सीखने में आ जाता है। ऐसा तत्व ज्ञान है, ये परमात्मा का स्वरूप है, ये जगत का स्वरूप है, ये जीव का स्वरूप है, ऐसा और बोध हो जाते हैं। तो इस बोध से कर्म नष्ट नहीं होते। ज्ञान योग से जब समता आ जाती है, राग द्वेष हर्ष शोक नष्ट हो जाते हैं ज्ञान से, तत्व ज्ञान से, जीवन मुक्ति हो जाने से, तो उससे वो भी कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो ये कर्मों का सर्वथा संचित का नाश करने वाली ये तीनों ही है, पर तीनों में भी योग होने से, योग का मतलब समता होने से, कर्म है कर्म योग है, भक्ति है भक्ति योग है, ज्ञान है ज्ञान योग है, ये दो दो चीजें हैं, तो उसमें सब नष्ट हो जाते हैं। तो ये कर्मों का विषय बीच में आया, अब हम पीछे वो ले लेते हैं। तो फिर भक्ति ज्ञान योग में चलते चलते फिर भक्ति प्राप्त होती है, और भक्ति के बाद में भगवान का ज्ञान होता है। पहले ज्ञान होता है आत्मज्ञान, ब्रह्मभूत है, वो ब्रह्म रूप होता है, ब्रह्मभूत है प्रसन्न आत्मा, न सोचती न कांक्षती, समस्त सर्वेश में समता प्राप्त हो जाती है। तो समता प्राप्त होने के बाद में मद भक्ति में लभते परा, ये परा भक्ति प्राप्त होती है, उसको कुछ इच्छा नहीं संसार की, बोध हो गया, बोध के बाद परा भक्ति होती है। परा भक्ति कहो अगर प्रेम लक्षणा कहो, वो उत्कट भक्ति होती है जिसमें प्रेम ही प्रेम होता है। थोड़ी सी बात और कह दूं कि ये साधन जो करता है मनुष्य, भक्ति योग का साधन करता है, तो भक्ति करता है उसमें साधन भक्ति होती है, फिर साध्य भक्ति होती है। साधन भक्ति के 9 भेद बताए हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम ये नौ प्रकार की भक्ति है, ये साधन भक्ति है, अपरा भक्ति है। आत्म निवेदन, अपने आप को भगवान में के सुपुर्द कर दिया, इसके बाद प्रेम लक्षणा भक्ति होती है, वो परा भक्ति गीता में जिसको कहा है वो प्रेम लक्षणा है। तो प्रेम लक्षणा में पहले प्रेम आता है, जैसे भगवान के गुण अच्छा लगे, भगवान के लीला अच्छी लगे, भगवान के प्रभाव अच्छा लगे, भगवान का तत्व अच्छा लगे, भगवान की चर्चा अच्छी लगे, भगवान का नाम अच्छा लगे, ये जहाँ प्रिय लगता है यहाँ से भक्ति शुरू हो जाती है। जो प्रियता पैदा होगी रत्न गुरुत्पत्ति, भगवान अच्छे लगने लग गए, कीर्तन करते हुए, पद गाते हुए, भगवान की लीला कहते हुए जो शुरू हुआ, यह भक्ति शुरू हो गई। इससे पहले नाम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान की लीला पढ़ते हैं, कथा सुनते हैं, ये सुनने से सुनते 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 पहले इसमें चार भूमिका होती है। प्रथम महता सेवा, महापुरुषों की सेवा होती है, तब दया पात्रता, तो पहले उनकी सेवा करते करते उनकी दया का पात्र हो जावे तो दया पकड़ सकते हैं। जब तक पात्रता नहीं तब महात्माओं की दया को पकड़ नहीं सकते, दया तो होती है उनमें, तो दया पात्रता आ जाती। दूजी भूमिका गए, उसके बाद फिर हरिगुण श्रुति, भगवान के गुण है, प्रभाव है, रहस्य है, लीला है, इसका श्रवण होता है। तो प्रथम महताम सेवा, तद दया पात्रता, तथा श्रद्धा तेषां धर्मेषु, तीसरी भक्ति है उसी धर्मों में श्रद्धा हो जाती है। मन क्षमा है, दया है, संतोष है, त्याग है, तपस्या है, इनमें एक रुचि हो जाती है। अपने वैराग्य होना चाहिए, क्षमता आनी चाहिए, शांति मिलनी चाहिए, ये जो गुण है अच्छे, त्याग वैराग्य आदि देवी संपत्ति, इसमें रुचि हो जाती है, इनका पालन करते हैं, ये ज्ञान भक्ति की तीसरी भूमिका हो जाती है। उसके बाद में भगवान के गुण सुनने होते हैं, पहले साधन है, शांति आदि इसमें रस आता है, इसके बाद भगवान के गुणों में रस आता है। गुण सुनते हैं, भगवान की लीला सुनते हैं, भगवान का प्रभाव सुनते हैं, भक्तों के चरित्र सुनते हैं, तो उसमें एक विलक्षण आनंद आता है। तो ये देवी संपत्ति आदि के बाद में तो हरिगुण स्तुति है होती है, इसलिए सुनते सुनते रक्तम क्रोधपत्ति होती है, भगवान में रति प्रीति पैदा हो गई, भगवान प्यारे लगने लगे, मीठे लगने लगे। इसी को गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि कामे नारी प्यारे जी में लोभी प्रिय जी में दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। रामायण की पूरी रचना करके अंत में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, मैं क्या चाहता हूँ कि कामे नारी प्यारी जी, जैसे कामी को स्त्री प्यारी लगती है, स्त्री को पुरुष प्यारा लगते है, कामी को प्रगत वो नहीं, त्यागी वो नहीं, कामे नारी प्यारी जी मेरे लोभी है प्रिय जी भी दाम, लोभ को जैसे दाम प्यारे लगे, पैसे प्यारे लगते हैं, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मैं, ऐसे रघुनाथ और राम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। तो रघुनाथ और राम ये क्या हुआ, रघुनाथ तो भगवान का स्वरूप हुआ, राम भगवान का नाम हुआ। तो रूप के प्यार प्यार के विषय में उसका स्नेह लगे, उस विषय में तो कामे नार प्यार जी ये दिया, और नाम के बीच में बताया कि दाम, जैसे लोभी को दाम प्यारे लगते ऐसे नाम प्यारा लगे, जैसे लोभी होता है उसको रुपयों की गिनती प्यारी लगती है, हजार दस हजार लाख दस लाख दस लाख बीस लाख करोड़ अरब, ये गिनती प्यारी लगती है, ऐसे नाम में रुचि होती तो नाम की गिनती राम 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 करते करते ही रहे, फिर छूटता ही नहीं, अधिक से अधिक हो जाए, ये दाम की तरह नाम है। रघुनाथ है भगवान का नाम स्वरूप, तो स्वरूप जैसे काम है नारी प्यार जो स्वरूप में आकर्षण होता है, वो प्रेम होता है, वो भगवान के स्वरूप में, भगवान का स्वरूप अच्छा लगे, भगवान का श्रृंगार अच्छा लगे, भगवान का मुख अच्छा लगे, वो ऐसी विलक्षणा है भगवान के स्वरूप में, विचित्रता है, वो अच्छे लगती है, तो भगवान भी मोहित हो जाते हैं उसमें, भगवान के स्वरूप में भगवान मोहित हो जाते, दर्पण देखकर भगवान मुख देखते हैं तो भगवान रीत जाते हैं, विलक्षण आकृष्ट हो जाते हैं। कहीं कहीं हमें की बात में से पढ़ने में सुना है कि भगवान देखते हैं तो वो भावना टेढ़ा होते थे, अपने सीधे सही हो तो ऐसा होता है कमान की तरह, जैसे कबाड़ी होती है वो बीच में सीधी होकर दोनों तरफ ऊंची होकर के ऐसे होती है कमान की तरह। ऐसे भगवान की टेढ़ी भ्रूटी देख करके एक दिन भगवान रामचंद्र जी ने देखा तो उनको बड़ा दुख हो गया कि भाई मेरी ऐसी टेढ़ी दृष्टि है तो देख कर लोग डर जाएंगे, कहीं तो बड़े अनर्थ हो जाएगा मेरी सुंदरता से। कभी तो सुंदरता देख रीत जाते हैं, कभी देख डर जाते हैं। तो भगवान कैसे सुंदर स्वरूप, वो सुंदरता जो स्वरूप है उसके विषय में काम है नार प्यारी जी का, या जो लोभ प्रिय दाम ये भगवान के नाम के विषय में कहा। तद जपस तदर्थ भावन, भगवान के नाम का जप करना, भगवान के स्वरूप का ध्यान करना, तो उस ध्यान में मस्त हो जाते हैं, रूप में मस्त हो जाते हैं। तो ये रूप ऐसा प्यारा लगना चाहिए, दाम प्यारा लगना चाहिए। तो रूप में सुंदरता है जो भगवान को आकर्षित करती है। आत्मा राम गणाकर्षी, भगवान का स्वरूप जो आत्मा राम है, आत्मा रामा आप कामा अकृतिका गुरुद्रोह, चार तरह के बताए जो कामना करने पर भी नहीं करे। जब गोपिकाओं का संवाद हुआ, रास लीला करते रहे, तो रास लीला में जरा थोड़ा मान हो गया, श्री जी के भी मान हो गया, क्यों भगवान उनके साथ खेलते हैं, वो करते जैसे नचा जैसे नाचते हैं। अब कहीं गुगरा खुल जाता है तो वो भगवान स्वयं उन गोपिकाओं का गुगरा बांधते हैं, उनकी श्रृंगार करते हैं, अच्छा करते हैं। ऐसा करते करते गोपिकाओं के मन में आ जाता है कि ये तो हमारे वश में हो गए, हमारे सब काम करते हैं। ऐसे जब मन में आ जाता है तो वो एक मान होता है, एक अभिमान होता है। मान होता है और अभिमान, ये दो चीज होती है। तो वो दो चीज होने से भगवान वहाँ अंतर ध्यान हो जाते हैं, छिप जाते हैं, छिप जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। तो व्याकुल होने से जो अभिमान था वो तो मिट जाता है पहले ही, अब क्या अभिमान करे, भगवान तो छिप गए। अब मान रहता है तो प्रसाद आय क्या प्रसाद आय और छिप तो गए, प्रशांत आय प्रसाद आया, प्रशांत आए, दोषो जाया हुआ तत्री अंतर दिए थे, अंतर्धान हुए, प्रसाद आया, प्रशांत आया। तो वो जो अभिमान है उसको शांत करने के लिए, अरमान है उसको स्वच्छ निर्मल करने के लिए भगवान अंतर ध्यान होते हैं। तो अभिमान को तो दूर करना है और प्रसाद जो मान होता है उसको स्वच्छ निर्मल करना है। रसलीला में देखा हो ना, कभी भगवान मान करते हैं, कभी श्री जी मान कर जाती है, तो जल्द जाओ जाओ मैं नहीं चले जाओ इस तरह से। तो वो मान होता है, तो मान को तो शुद्ध कर दिया जाए और प्रसाद अभिमान उसको नाश कर दिया जाए, इसके लिए अंतर ध्यान होते हैं। फिर भगवान प्रकट होते हैं तो प्रकट होकर लीला करते हैं सभी। तो मान है एक जो रस है वो रस बढ़ता है, मान से रस विशेष बढ़ता है। तो मान के प्रेम की लीला बड़ी अटपटी होती है, तो अटपटी में मान होता है, उससे भगवान से वियोग को करते हैं, तो वियोग से संयोग की एक इच्छा बड़ी प्रबल होती है। जितना वियोग किया जाए उनसे योग की शक्ति मिलने की शक्ति में उत्कटता आती है, विलक्षणता आती है। और संयोग से एक रस मिलता है, तो भगवान के प्रेम में नित्य योग और नित्य वियोग है, नित्य वियोग नित्य योग। तो ये मान में वियोग होता है और प्रेम में संयोग में भोग होता है। तो वो जो भगवान के साथ संयोग है ये प्रेम की लीला है, उस प्रेम की लीला में नित्य योग होता है रस लेने के लिए, वियोग होता है रस बढ़ाने के लिए, और योग होता है उसमें विशुद्ध शुद्धता निर्मलता स्वच्छता वो आने के लिए, वृद्धि होने के लिए। ऐसे लीला होती है भगवान की। तो वो भगवान के स्वरूप के साथ होता है और नाम के साथ होता है, वो संख्या के साथ होता है। तो कामे नार प्यारे जी में लोभी प्रिय जी में नाम, जैसे लोभी के नाम की रुचि होती है ऐसे नाम की रुचि बढ़ती है। तो रात दिन राम नाम राम राम, ऐसा लोभ बढ़ता है कि उसे छूटता नहीं नाम, नींद में भी छूटता नहीं, बहुत विलक्षण रुचि होती है नाम में। तो नाम जपता ही रहे तो उसमें संख्या की मुख्यता होती है, दाम में संख्या की मुख्यता है। एक 5 रुपयों का नोट है और बड़ा शुद्ध है, गड्डी में से अभी निकला है ऐसा है, और एक 10 रुपयों का नोट है उसके 4 टुकड़े हो गए, ये मेला मेला हो गया। किसी को पूछे कौन सा लोगे तो वो 10 का लेगा, बड़ा स्वच्छ निर्मल 5 का नहीं लेगा वो, क्योंकि उनमें दिखने में तो सुंदर ये दिख है, वो सुंदर नहीं दिखता, पर संख्या का लोग संख्या अधिक होती वो रहेगा उसमें। ऐसे नाम में संख्या की मुख्यता होती है और स्वरूप में सुंदरता की मुख्यता होती है। तो भगवान का सुंदर रूप ही अलौकिक है और नाम भी अलौकिक है, तो वो संग्रह और आकर्षण विलक्षण है। तो गोसाल जी महाराज कहते हैं, महाराज कामे नारी प्यारे जिम लोभी प्रिय जिमे दाम, ये दो दृष्टांत क्यों दिए कि मनुष्यों को तो एक तो भोग और एक संग्रह दो इच्छा होती है, जितने मनुष्य फंसे हुए है, साधु हो चाहे गृहस्थ हो, भाई हो चाहे बहन हो, किसी संप्रदाय का हो, धन इकट्ठा हो जाए और सुख भोग ले, ये दो चीज है। भोगे ईश्वरीय प्रसन्नता नाम तया भरत सेत सब व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधो न भी दिए थे। दूसरे अध्याय के 44वें श्लोक में भगवान कह रहे भोगे ईश्वरीय प्रसन्नता, भोग में ऐश्वर्य में जो आसक्त है, ऐश्वर्य मानो इकट्ठा धन करना, मकान बनाना, श्रृंगार करना, बड़ी सुंदर सजाना करने, ये भोग है। और ऐश्वर्य मानो जिसमें धन इकट्ठा ज्यादा हो जाए और सुख भोगना उसमें, तो भोग और ऐश्वर्य दो के लिए मानो संग्रह और सुख भोग से फंसे हुए आदमी परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। परमात्मा की प्राप्ति चाहने वालों को भोग और ऐश्वर्य अच्छा नहीं लगता है, परंतु इसमें फंसे हुए दो ही चीज लगती है, कामोप भोग परमा एतावती थी निश्चिता। आज भी संपत्ति वालों का निश्चय है कि संग्रह करना सुख भोगना, संग्रह खूब कर देना, सजावट खूब करना, ऐश्वर्य खूब बढ़िया हो जाए और उसका सुख भोग है, बैठने में, उठने में, सोने में, जगने में, भोगने में, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसमें मान आदर सत्कार बढ़ाई में, आराम करना, आलस प्रमाद आदि में भी सुख लेना, तामसी ऐसे सुखों में जो आसक्त है वो परमात्मा की तरफ लग नहीं सकते। जब सयात्मिक बुद्धि समाधो न भी दिए थे, 41 से शुरुआत 44 तक का ये प्रकरण है दूसरे अध्याय में। जब सयात्मा का बुद्धि एका एक निश्चय होता है, भजन ही करेंगे, भगवान में ही लगेंगे, ऐसा निश्चय करे उसके भक्ति प्राप्त होती है। तो वो एक निश्चय में कौन है बाधक, ये भोगों का और संग्रह का, भोग का संग्रह का जो आग्रह है, आकर्षण है, धन अधिक हो जाए, भोग अधिक भोगे, सुख संपत्ति अधिक हो जाए, सुख होगे, ये आसक्ति जिनकी है उनकी व्यवसाय में बुद्धि नहीं होती, निश्चय ऐसा का भजन ही करेंगे, ऐसा का वो टिकती नहीं, भोग और ऐश्वर्य में लगी रहती है। तो व्यवसायत्मक का बुद्धि जो हो जाए एक निश्चय, जैसे हम अब भजन ही करेंगे, भगवान की प्राप्ति करेंगे, ऐसा जब विचार हो जाता है पक्का, तो उसका फिर रास्ता बहुत सरलता से अगाड़ी चल पड़ता है। तो ये अगाड़ी रास्ता चलता है जब भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति नहीं हो, तब ये आसक्ति रहते हुए अच्छी लगती है, भक्ति अच्छी लगती है, ज्ञान भी अच्छा है, कर्म भी अच्छा है, सब अच्छा लगता है, परंतु निश्चय नहीं होता कि अब भगवान भजन ही करना है, ध्यान देना है, इस निश्चय में बहुत विलक्षण शक्ति है, इसमें ताकत है। अभी से शुद्ध दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, सांगोपांग दुराचारी है, दुराचार का उपांग भी नहीं छूटा, अंग भी नहीं छूटा, सब तरह के दुराचार है, पाप करता है, आसन करता है, भजते माम अनन्य भाग, तो अनन्य भाग वहाँ तेल धारावत चिंतन नहीं है, एक भगवान में धन लग गया ऐसे बात नहीं है, अनन्य भाग का न अन्यम भजती, अन्य कोई इच्छा नहीं है, ना भोगों की इच्छा है, ना संग्रह की इच्छा है, ऐसे अनन्य भागों में एक भगवान का भजन ही करता है। तो भगवान कहते हैं क्षिप्रम भव धर्मात्मा, पापी से पापी अत्यधिक पापी होता है वो भी क्षिप्रम, ये क्षिप्रम का नाम क्षिप्रम अरम द्रुतम शीघ्रम, ये है बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है, वो सम्यक धर्मात्मा हो जाता है जल्दी कब, तो उसमें क्या सम्यक व्यवस्थित हो ऐसा व्यवसाय सम्यक कर दिया, निश्चय पक्का कर दिया, उस निश्चय करने मात्र से बहुत पापों का नाश होता है, नहीं तो पाप भी रहते हैं, पुण्य भी रहते हैं, भोग भोगते हैं, जन्मते हैं, मरते हैं, सुख दुख भोगते रहते हैं। वो व्यवसाय बुद्धि जब हो जाती है एक, जे एक लक्ष्य एक बन जाता है, तो फिर वो भक्ति भी प्राप्त हो जाती है, ज्ञान भी, योग भी सब प्राप्त हो जाते हैं, ये व्यवसायत्मक बुद्धि है का, तो किसकी नहीं होती भोग प्रसन्नता इनके लिए होती, व्यवसाय होती नहीं, निश्चय कर ही नहीं सकते, क्योंकि भोगों को देखते लाल टपकती है, पैसा आ जाए, रुपया आ जाए, बड़ा राजी होता है, तो भक्ति कैसे करेगा बेचारा, वो दो में फंसा हुआ है। तो भोगेश्वरी में उपलब्धि हो जाए और एक विचार का भजन करना है, सुख मिले चाहे दुख मिले, संपत्ति मिले चाहे विपत्ति मिले, प्रारंभ देर खल विघ्न भय नीचे ही, नीचे दर्जे के होते हैं वो तो विघ्न के भय से पहले भजन ध्यान शुरू ही नहीं करते, सत्संग भजन ध्यान करे तो विघ्न आ जाएगा, भाई सजता तो है नहीं, कई बार हमने किया फिर छूट जाता, किया छूट जाता है, तो आरंभ करने से ही हाथ धो लेते हैं, कोई तो होता नहीं हमारे, और मध्य दर्जे के उनसे ऊंचे दर्जे के है वे आरम्भ तो कर देते हैं, पर विघ्न आता तो छूट जाता है, पर तो उत्तम दर्जे के पुरुष वे होते हैं जो प्रारंभ कर दिया ठीक रस्ता है, फिर विघ्न ही पुनः पुनः प्रतिहन्यवाना बार बार विघ्न आकर छूट देते रहे, तो प्रारंभ चौत्तम जाना न परिचय जल्दी, अब प्रारंभ कर दिया कर दिया कर दिया भाई, उखल में माता दिया धमके से क्या डरना है, अब तो हमने शुरू कर दिया है तो कर ही दिया है, अब तो इधर ही जाएंगे मुड़ करके पीछे नहीं। रघुवंश में दृष्टांत आया है, राजा जब विजय करने के लिए गए तो वो विजय करने के लिए गए तो शत्रु थे बहुत, तो उनके सामने शत्रु जा रहे हैं, तो महाराजा रघुवंश जो थे शूरवीर थे वो तो उस तरफ चलते हैं, पर दूसरे कहर होते पीछे दौड़ जाते, वहां दृष्टांत दिया कालिदास ने, उपमा कालिदास जी बड़ी विचित्र होती है, यथस्तु कक्षस्थ है मानो घास है और घास में अग्नि लग गई तो अग्नि के धुआं तो पीछे जाएगा, मान अग्नि थोड़ी पीछे जाएगी, अग्नि आगर ही अग्नि जाएगी सामने, तो मेरे सूर्य शत्रु की तरफ भी जा रहे हैं, कोई कार पीछे हट जाओ तो हट जाओ, बोले ये दस तो कक्षा स्तर है होगा नहीं, जा जहाँ घास है वहां पर लोग अग्नि आगाड़ी आगाड़ी जाती है, उधर से मिल जाता अग्नि और तेज हो जाती है, धुआं पीछे जाने से कम होती, परंतु अग्नि बढ़ेगी घास की तरफ ही, ये उस नहीं पीछे नहीं बढ़ेगी, इस तरह से शूरवीरता में भजन ध्यान में लग जाए, जिसका व्यवसाय हो जाए निश्चय पक्का, तो बार बार विघ्न आने पर भी वे वहां से हटते नहीं। एक कल भी सुनाया था, आज कहां सुनाया था बात, एक बात ऐसी आई थी भागवत में आया है कि भक्ति का आचरण नहीं करते ये नीर वृंदाक्ष श्रेयश्रुतिम भक्ति मुदस्यते विभो, ब्रह्मा जी की स्तुति में आता है चौदहवें अध्याय में, दसवें स्कंद के आरंभ में चौदहवें अध्याय में ब्रह्मा जी ने स्तुति की है, भगवान बच्चा ले गया पीछे अब ले गया फिर क्षमा मांगी वहां स्तुति की, उसमें आता है श्रेयश्रुतिम भक्ति मुदस्यते विभो, हे बाग आपकी जो कल्याण परंपरा करने वाली भक्ति है उसका त्याग कर दे, ये केवल बोध लब्ध केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो क्लेश उठाते हैं भक्ति का त्याग कर देते हैं, भक्ति को बामो नहीं समझ छोड़ देते हैं, और कृष्णंत ये केवल बोध लब्ध तेषाम अशो क्लेश ले शिष्य थे, उनको क्लेश ही क्लेश बाकी रहता है, वो तत्व नहीं मिलता, जैसे स्थूल तुषावक आती ना जिनमें से दाने निकल गए, तुष दूसरा पीछे है उन्होंने कूटे गोयु क्या निकले पसीना निकले और उनमें निकला दाना तो है नहीं, इस वास्ते केवल वो उपलब्धि के लिए करते तेषा मशो क्लेश ले वशिष्य थे नान्यद यथा स्थूल तुषावक आती ना मिलता में नहीं, ऐसे और जगह भी आया है भागवत में कि आरुह्य कृष्ण परम पदम तथा वो जो केवल ज्ञान है ये नीर वृंदाक्ष मुक्त मारी न विमुक्त मारी नजस्त भावाद विशुद्ध बुद्ध या आप में तो भाव है नहीं और ज्ञान के लिए उपवास करते हैं ज्ञान में लगे हुए हैं, ये नीर वृंदाक्ष विमुक्त मानी न और विमुक्त मान लिया वेदांत आज सुन कर हम तो जीवन मुक्त हो गए तत्वज्ञ हो गए महापुरुष हो गए विमुक्त माने न तयस्त भावात आप में भावस्थ हो गया, भगवान भाव रहा नहीं अविशुद्ध बुद्ध या उनकी साफ बुद्धि शुद्ध नहीं हुई, आज ये कृष्ण परम पदम तथा एक बड़े क्लेश ऊंचे पद को प्राप्त होते हैं मनुष्य जन्म प्राप्त हो जाता है, तो पतन त्याधा वे गिर जाते हैं युष्म संग्रह, आपका अनादर किया, आपके चरणों का आदर न करने से ज्ञान में केवल ज्ञान के लिए करते हैं, वे गिर जाते हैं। तथा न ते तावक माधव, तथा न ते माधव तावक जना, ये माधव आपके जन हो गए हैं और आपका भजन करते हैं, वे उसे पतन उनका नहीं होता। तो वे तो विचरंत तो गुप्ता विचरंत निर्भया विनायका नीकम पुरुष प्रभो, विनायकों के मनोविघ्नों के बड़े बड़े विघ्न है, उनके सिर पर पैर रख के नाचते हैं और आपको प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे वो करते हैं। उनको नहीं वो को बताया है कि वे भगवान की भक्ति में तत्पर सा लगे हैं, उनके लिए देवर्षि पितृ देवर्षि भूताप त्रिणाम पितृणाम न किं करो नाय मृणी चराजन सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम, उनके लिए जो ऋषि ऋण है, पितृ ऋण है, ये देव ऋण है, भूत ऋण है, और ये कोई ऋण उसके बाकी नहीं। देव ऋषि देवर्षि भूता आप चंद्रणाम पृथ्वीराम न किंकर नाय मृणी चराज, वो इनका किंकर नहीं है, दास नहीं है, सर्वात्मनाय शरणम शरण्यम आपके शरण हो गए, सर्वथा भगवान के परायण हो गए, कथो मुकुंदम परिहृत्य कर्तव्य, अपना कर्ज सूक्ष्म छोड़ करके भगवान के शरण हो गए। तो भगवान के शरण हो जाने सब काम ठीक हो जाता है। एक आस रोण एक बदर एक आस विश्वास एक राम घन श्याम तुलसीदास, एक आश्रो एक बल एक अरण्य भाव से भगवान में, तो वे भगवान बनाए का नहीं कर पूर्ण बिनाए, जो विघ्न आते हैं बिना विघ्नों के माथे पर नाचते हैं वे चढ़ जाते हैं उनसे। तो यह अभिगुप्ता विचंत निर्भया आपके अभिगुप्त आपके प्रेम से रक्षित है आपकी कृपा से, तया भी गुप्ता विचरण निर्भया वो निर्भय हो विचरण करते हैं आपकी कृपा के बल पर, तो उनको वो भक्ति प्राप्त होती है। अलग भक्ति पर प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है, परा भक्ति प्राप्त होती है, पर परा भक्ति में एक विलक्षणता होती है, बड़ी विचित्रता। साधन हरेक करता है, पहले साधन की इच्छा होती है, फिर साधन भजन ध्यान में लगता है, फिर साधन करते करते ऊंची दर्जे में चला जाता है, फिर साधन करता है, फिर साधन होता है, फिर साधन रूप हो साध्य रूप हो जाते हैं। पर ये तीन बातें होती है, साधन का बल रहता है तो साध्य परमात्मा का ख्याल रखते हैं, साधन करते हैं साध्य स्वयं होता है, तो साधन करते करते जो साधन कर रहे हैं वो साधक पना छूट कर साधन ही साधन रह जाता है, साधक पने का अभिमान मिट जाता है, मैं भक्त हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं योगी हूँ, मैं महात्मा हूँ, बड़ा साधन करने वाला हूँ, ये मिट जाता है। तो करना रहता है, करने के बाद में होना होता है, फिर वो भक्ति रह जाती है, तो भक्ति रह जाती है तो भक्ति केवल रह जाती है, ये भक्ति होती है, इनके बाद प्रेम रक्षणा भक्ति होती है, तब भक्ति वो जो भक्ति में भजन करता हूँ ये भजन नहीं रहता, फिर स्वतः भजन होता है। करना होना है तीन प्रकृति श्रेणी होती है, पहले करना होता है, फिर भजन होता है, फिर भजन होते होते है वो परमात्मा उस स्थिति हो जाती है, सब परमात्मा प्राप्ति होती है। प्रेम लक्षणा भक्ति वो है जो भगवान के स्वरूप में है में स्थित हो गए, वहाँ प्रेम का ही आस्वादन होता है, प्रेम का ही लेन देन होता है, सिवाय प्रेम के कुछ चीज नहीं आती। जैसे ज्ञान में चलते हुए ज्ञान पहले जिज्ञासु होता है, फिर जिज्ञासा जिज्ञासु अपना मित्र जिज्ञासा रहती है, और जिज्ञासा के बाद में ज्ञान ही रहता है, वो करना और होना, करना तो जिज्ञासु का, होना जिज्ञासा का, और है वास्तव में ज्ञान, इस दोनों मार्गों में ऐसी बात हो जाती है। तो वो तत्व रह जाता है, उस तत्व में आकर स्वतः ही रहता है, उसमें जो प्रेम होता है वो प्रेम विलक्षण होता है, वो विलक्षण ऐसा होता है कि ज्ञान में तो द्वैत से अद्वैत बनते हैं, पहले द्वैत होता है फिर अद्वैत बनते हैं, और अद्वैत के बाद में द्वैत बनता है। जैसे भगवान कृष्ण एक राधा जी रूप से एक कृष्ण रूप से दो हुए, तो एक से दो, पहले दो से एक होते हैं ज्ञान होता है, दो से एक हो जाए दो दसम विवेक मिट जाए, विवेक में जो सत्र असत्र नित्य नित्य सार असार ये विवेक होता है, विवेक होते होते वो जड़ता हटती है, जड़ता हटती है चिन्मयता रहती है, चिन्मयता रह करके अद्वैत हो जाता है, अद्वैत के बाद जो द्वैत होता है वो ज्ञान के बाद भक्ति होती है, तो वो बताया है कि भक्तिर्थं कल्पितं द्वैतं अद्वैतादपि सुंदरम्। अद्वैत से बहुत सुंदर होता है तो उसमें इतना प्रेम होता है कौन श्री जी है श्री कृष्ण ये पता नहीं लगता। भगवान कृष्ण के तो प्रेमास्पद है श्री जी और श्री जी के प्रेमास्पद है कृष्ण। अब कौन बड़ा है कौन छोटा है पता ही नहीं लगता। कृष्ण तो भगवान प्रेमी है प्रेमास्पद श्री जी है और प्रेम तो श्री जी है और प्रेमास्पद भगवान कृष्ण है। उसके इष्ट वो है इष्ट वो है उनको ऐसा होता है कि भगवान कृष्ण की तो चेष्टा है कि श्री जी राजी हो जाए ये प्रसन्न हो जाए। श्री जी की ये चेष्टा होती है कि कृष्ण राजी हो जाए ये प्रसन्न हो जाए। एक एक की प्रसन्नता के लिए होते हैं उसमें रस होता है इसका नाम रास होता है। जिस रास में भगवान कृष्ण राजा जी को प्रियता करता है कि ये प्रिय जो आ जाए राजा जी की चेष्टा कैसे भगवान प्रिय हो जाए। गोपिका में मिलाने वाली होती दोनों मिलाने वाली जिसमें जो मान होता है उस प्रसन्नता लाने के लिए गोपिका के बीच में मिलाने वाली होती है तो उनका बीच में प्रतिया होती तो प्रेमास्पद और प्रेम दोनों पता ही नहीं लगता कि कौन प्रेमी है कौन प्रेमास्पद है कौन दास है कौन स्वामी है इसमें पता ही नहीं लगता। भगवान दास है श्री जी महाराज वहाँ पर मालिक हो जाती है मेरे में ये दास हो जाते वो मालिक हो जाते ऐसे उनका प्रेम का चलता है। तो अद्वैत के बाद होता हो अद्वैत ज्ञान जड़ता का संबंध विच्छेद होने पर केवल चिन्मय की लीला होती है वो चैतन्यमय है वो दिव्य वृंदावन है उसमें मकान है भी चिन्मय है वहाँ पर जो वृक्ष है वो भी चेतन केवल चेतन जड़ता नहीं अपने ये जड़ है ये सही जड़ है आत्मा चेतन है मानो उसे भीना है दीवाल है वृक्ष है पक्षी है पशु है ये सब केवल चिन्मय ही चिन्मय तत्व तो ज्ञानमय चिदानंदमय देह तुम्हारी विकृत विकार जान अधिकारी चिदानंदमय देह होती है। ऐसी पराभक्ति में ऐसा एक विलक्षण आनंद होता है तो विलक्षण आनंद में रात दिन मिले ही रहे तुम्हारो कबू मिले ना कदे मन मिले ही नहीं ऐसा प्रेम बढ़ता है उनका अलौकिक विलक्षणता वो पराभक्ति होती है। मत भक्ति पराम उसी बात विषते उनमें रास लीला में भगवान की लीला में प्रवेश हो जाते हैं। तो ये रास संतों ने कृपा की है जिनको वो आनंद हुआ है उन्होंने देखा कि लोग भी आनंद है उनसे ये लीला रसती रास लीला होती है तो लोग भी इस रस लोग ले तो इनमें वो देखना दिखाना रुपया पैसा इनमें लूट जाते हैं तो वो रस बहुत दूर रह गया जाकर यह हुई पड़ी भोगेश्वरी प्रसन्नता ना भोग और ऐश्वर्य आ जाते हैं सुख लेना और करना रुपया इकट्ठा करना फिर ये भी काम था तो ऊंचा बन हो गया साधारण हो गया। वास्तव में उस आनंद को लेने के लिए बात थी तो अद्वैत आदमी सुंदर अद्वैत तत्व ज्ञान है उससे भी सुंदर होता है प्रेम वो पराभक्ति होती है। वो प्रेम को नारद जी महाराज ने कहा था अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम प्रतीक्षम वर्धमानम वर्धमान होता है परंतु अनिर्वचनीय उसका निर्वचन नहीं होता उसकी व्याख्या क्या होगी। आपको जैसे भोजन करने से तृप्ति हुई और वो कैसी तृप्ति हुई व्याख्या करो आप प्यास लगे और जल पीने से आपको शांति मिली उसका विवेचन करो क्या विवेचन करो होता आनंद होता है। गूंगे का गुण है भगवान बाहर भीतर एक समान गूंगे को गुण दे दिया जो करता बता क्या है कैसा बोले क्या भैया बोल नहीं सकता ऐसा उसमें आनंद है ज्ञान में भी है प्रेम में भी ऐसा आनंद है उसका वर्णन नहीं कर सकते। तो पराभक्ति का विवेचन क्या करे वो एक अनुभव का विषय है। आप भी जिस चीज को लेते हो उसका विषय जैसे आपको कोई बढ़िया भोजन मिला और भोजन में स्वाद आया तृप्ति हुई उस स्वाद का वर्णन आप स्वाद का ही नहीं करते तृप्ति का कैसे वर्णन करोगे। अरे ये तृप्ति तृप्ति नहीं है ये भूख लगती है वो तृप्ति नहीं तृप्ति होने पर भूख नहीं लगती ये तृप्ति क्या है भोजन से धाप गए जल से धाप गए मान आदर से मस्त हो गए ये क्या है ये है थकावट खाते खाते खा नहीं सकते तो वह तृप्त हो गया तृप्ति हो गई तृप्ति क्या होगी नाटक तो हो गई शक्ति क्षीण हो गई जब तृप्ति होगी सब ऐसे पानी पीते पीते पानी पी नहीं सकते तो वो थक गए उसे थकावट हो गई उसको तृप्ति कहते हैं। भगवान की तरफ चलते ये चीजें नहीं है वहां तो जैसे लोभी के प्रतिलाभ लोभ अधिकारी होता है इस तरह से उनकी प्रेम की आसक्ति बढ़ती रहती है जैसे कहा कि रामचरित्र सुनत अघाही रस विशेष जाना नहीं, रामचरित्र सुन से तृप्त हो जाते हैं तो उन्हें रस जाना नहीं है। रस जाने तो महाराज इनकी लक्षणता है, पदार्थ तो बढ़िया भोजन है उसमें चाहे तो हमारी शक्ति क्षीण हो जाए हम खा नहीं सकते, अथवा वो पदार्थ थोड़े रह गए खा में क्या खबरा की नहीं रहा, तो दो घाटा है। उस भगवान की भक्ति में खुद की तो तृप्ति तो होती नहीं और पदार्थों का अंत होता नहीं, इस वास्ते प्रतिक्षण वर्धमान वर्धमान मस्ती मस्ती रहती है, आनंद आनंद उसमें रहता है। ऐसी विलक्षण भक्ति बढ़ती है, ऐसे ज्ञान मार्ग में दोनों में ऐसी बात है। तो साधन भी होता है साध्य भी होता है, दोनों की चीजें ऐसे संप्रदाय दृष्टि से। इस विषय कर्म मार्ग में योग मार्ग में ये जो संसार का दुख है ये सब मिट जाता है, शांति मिल जाती है। वो शांति मिलती है उसके बाद में वो आरूष और मुनरे कर्म कारण उचित है। कर्म योग में आरूढ़ होने के लिए कर्म कारण है और योगारूढ़ हो गया तो शांति प्राप्ति के कारण है। वो शांति के बाद में भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है अथवा भगवान में बोध प्राप्त हो जाता है। पहले संस्कार बोध का है तो बोध हो जाता है, प्रेम का है तो प्रेम लक्षण भक्ति जुड़ जाती है, और केवल कर्मयोग में तो कर्मयोग में भी शांति मेरे तत्व ज्ञान हो जाता है। तत्व ज्ञान के बाद में भक्ति या संस्कार तो भक्ति जागृत हो जाती है, लेकिन तत्व ज्ञान में स्थिर हो जाते हैं। तो तत्व ज्ञान में स्थिर हो जाते हैं ये सांख्य योगी कर्मयोगी दोनों, परंतु भक्ति योगी होता है वो प्रेम के बिना बीच में नहीं अटकता, तो वो प्रेम में विलक्षण हो जाता है जो बढ़ता ही रहते प्रतिक्षण वर्धमान, ऐसा अगर प्रेम स्वरूप प्रतिक्षण बढ़ता है। मिले ही रहे तो मनु कब हो मिले ना, कभी मिले ही नहीं ऐसी भूख रहती है, मिले ही रहते हरदम ही पर कभी मिले ही नहीं। अनंत काल बीत जाएगा तो उनके रस का अंत आता नहीं, विलक्षण रस में चले जाते हैं, ऐसे रस की प्राप्ति होती है। वो ज्ञान के बाद में भी होती है और पहले से भक्ति का मार्ग चलते चलते भी वो मिलता है, तो भक्ति मार्ग में चलते चलते प्रेम बढ़ता है भगवान के गुणों में, भगवान के प्रभाव में, भगवान के लीला में, भगवान के स्वरूप में, भगवान के बोध में, भगवान के प्रेम में प्रेम बढ़ता है। वह गदगदा द्रवते यश्चित्तं उद्गायते नृत्यते च मद भक्ति योग तो भुवनं पुनाति, भगवान भक्ति वाला संसार को पवित्र कर देता है, ऐसे ज्ञान वाला भी संसार को पवित्र कर देता है। नारायण नारायण समय हो गए, ज्यादा हो गए।